जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम, जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजाकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, ब्रज भूमि वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, संवेद गौर भक्तवृंद की, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, गुरु गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले, सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सह गजातान सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चाद्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्सवे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तत्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वंदे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् चैतन्य चरितामृत से देख रहे हैं आदि लीला अध्याय द्वितीय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तदनंतर हम तीसवां श्लोक ही है प्यार नहीं है तो श्लोक को हम देखेंगे। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्यधीशा किल लोकसाक्षी। नारायणंगं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवेव माया। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मस्य धीशाखिल लोकसाक्षी नारायणंगं नरभोजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवेव माया नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मस्य धीशाखिल लोकसाक्षी नारायणंगं नरभोजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवेव माया माता जी शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की नारायण भगवान नारायण त्वम आप ना नहीं ही निश्चित ही सर्व सभी देही नाम देहधारियों के आत्मा आत्मा परमात्मा असी आप हैं अधीशः हे भगवान अखिल लोक अखिल लोकों के साक्षी साक्षी नारायणः नारायण के नाम से प्रसिद्ध अंगम पूर्णांशः नर नर का भू उत्पन्न जल जल में अयनात आश्रय स्थान के कारण तत् वह चा तथा अपि निश्चित ही सत्यम सर्वोच्च सत्य ना नहीं तब आपका एव बिल्कुल माया कृपया पीछे पीछे दोहराते जाएं हे प्रभुओं के प्रभु आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं आप निस्संदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है वे जिसका घर जल में है, जो नर गर्भोदाक्षायी विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण तो आपके अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और वे माया द्वारा सृजित नहीं है। तात्पर्य, यह कथन श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 14वां अध्याय 14वें श्लोक से लिया गया है। इसे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते समय कहा था। जब ब्रह्मा भगवान कृष्ण द्वारा अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किए जाने पर पराजित हो गए थे, ब्रह्मा ने यह देखने के लिए कि भगवान कृष्ण की परीक्षा ली थी, क्या सचमुच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही गोप बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों को उनके बछड़ों समेत चारागाह से चुरा लिया था, किंतु चारागाह लौटकर उन्होंने देखा कि सारे बालक तथा बछड़े वहीं पर थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें फिर से उत्पन्न कर दिया था। जब ब्रह्मा ने कृष्ण की यह योग शक्ति देखी तो उन्होंने हार मान ली और उन्होंने भगवान की स्तुति सृष्टि के स्वामी एवं हर वस्तु के दृष्टा के रूप में तथा हर एक जीव के भीतर स्थित परमात्मा के रूप में एवं सबको प्रिय कहकर की। वही भगवान कृष्ण नारायण अर्थात ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश गर्भोदाक्षायी विष्णु ने अपने आप को गर्भ सागर में स्थापित करके अपने शरीर से ब्रह्मा को जन्म दिया था। कारण सागर में महाविष्णु तथा जन जन के हृदय में परमात्मा रूप क्षीरोदक्षय विष्णु भी परम सत्य के दिव्य विस्तार है। यहां पर उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवों के चरणारविंद में दास कोटि कोटि वंदन करता है। आप सभी दास के ऊपर कृपालेश वर्षण करें, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही जीव का उद्धार हो सकता है। तो आप सभी वैष्णव जन दास के ऊपर कृपा करें। चैतन्य चरितामृत वह दिव्य ग्रंथ है जिसको कवि श्रेष्ठ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने अपनी चरम अवस्था में लिखा था। वो भी ऐसे ही नहीं लिखा था, भगवत आज्ञा से लिखा था। और सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जब वह मदन मोहन स्वरूप के सामने गए थे तो मदन मोहन जी ने स्वयं आज्ञा माला उनको भेंट स्वरूप प्रदान की थी कि आप इसको इस दिव्य कार्य को आप आगे बढ़ाइए। अगर आप पूरे चैतन्य चरितामृत को देखेंगे तो इसमें 88 ग्रंथों का समन्वय है। मूल रूप से तो ऐसा लोगों को लगता है कि ये बंगला के प्यार हैं, लेकिन वास्तव में ये जो भाषा यहाँ पे प्रयोग है ये केवल शुद्ध बंगला नहीं है, ये बंगला और ब्रज भाषा का मिश्रण है ना। आप देखेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। तो ब्रज भाषा के भी कई शब्द इसमें प्राप्त होते हैं और बंगाली शैली भी इसमें प्रस्तुत हो जाती है, तो दोनों का ही एक मिश्रण है। चूंकि ये ग्रंथ ब्रज में ही लिखा गया है तो ब्रज भाषा का होना स्वाभाविक ही है। 88 ग्रंथों का समन्वय इसमें है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये सोचकर ग्रंथ का निर्माण कर रहे थे कहीं लोगों को ये ना लगे कि ये भावुकता में लिखा गया एक कोई ग्रंथ है, इसलिए जहां कहीं पे भी कुछ सिद्धांत को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही इस श्लोक को उद्धृत कर दिया। आप देखेंगे इनकी शैली इसी प्रकार की है कि मूल रूप से जो बात है वो बंगला में भी कहेंगे या फिर जो प्यार है उसके रूप में कहेंगे, और फिर जो सिद्धांत है कि कहां से ये सिद्धांत हम बोल रहे हैं उसकी पुष्टि करने के लिए भागवत का श्लोक, भगवत गीता का श्लोक, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक, विदग्ध माधव का श्लोक, पता नहीं कहां कहां के श्लोक इसमें, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, बराह पुराण, सभी पुराणों के श्लोक आपको प्रायः इसमें मिल जाएंगे। और गीता भागवत के श्लोक तो प्रायः प्रमाण के रूप में इसमें मिलते ही हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी प्रायः कहा करते थे कि जो चैतन्य चरितामृत का जो अध्ययन है ये सबसे उच्चतम स्तर का व्यक्तियों के लिए है। क्यों उच्चतम? क्यों? क्योंकि जिसको पूरे शास्त्रों का निचोड़ मालूम है या फिर अनेक शास्त्रों में जिसने अध्ययन किया है, फिर वह सार रूप में भगवत तत्व की माधुरी का अनुभव करना चाहता है, तो अगर वह इस ग्रंथ को पढ़ेगा चैतन्य चरितामृत को, तो उसको श्री कृष्ण की जो परम रसपूर्ण माधुरी है, ब्रज माधुरी या फिर कहें ब्रज का जो अनुभव है, तो उसको व्यक्ति चैतन्य चरितामृत पढ़ के ही प्राप्त कर सकता है। कई आचार्य कहते हैं कि ये जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत का परिशिष्ट वर्णन है। परिशिष्ट कहें तो श्रीमद् भागवतम जहां समाप्त होती है उसके आगे का भाग ही यह चैतन्य चरितामृत है। उसी के सिद्धांतों को और थोड़ा सा आगे विस्तार करते हुए, थोड़ा सरल बनाते हुए और सार रूप में प्रस्तुत करते हुए इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया। तो ये कोई अलग ग्रंथ नहीं है, इसको आप श्रीमद् भागवतम का ही विस्तार कह सकते हैं या परिशिष्ट ग्रंथ कह सकते हैं। जैसा कि इस अध्याय में चल रहा है, यहाँ पे कविराज जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे एक प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी थी दसम स्कंद की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो ऐसे यहाँ जो शीर्षक है अध्याय का वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो दोनों में कोई भेद तो है ही नहीं, एक ही वस्तु है। तो उन्हीं के तत्व का यहाँ पे निरूपण किया जा रहा है। जो इस अध्याय में बात चल रही है वो उन्हीं के तत्वों का निरूपण है। और मूल रूप से जो कृष्णदास कविराज जी हैं उनकी जो शैली है चैतन्य चरितामृत में वो इस प्रकार से है कि उन्होंने सबसे पहले जो पहला अध्याय लिखा मंगलाचरण रूप, उसमें उन्होंने पूरे चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा जाएगा उसकी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है ना। क्योंकि उनको बार बार ये भय लगा हुआ था, पता नहीं मैं कितना जीऊंगा, कब मेरा शरीर पूर्ण हो जाए और ये कहीं ग्रंथ अधूरा ना रह जाए। तो जहां प्रारंभ से ही उन्होंने लिखना जब शुरू किया तो भगवान की भगवत्ता को स्थापित करते हुए और मुख्य रूप से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता को स्थापित करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। कि अगर मैं दो ही अध्याय पूर्ण कर पाया तो भी व्यक्ति को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण कौन है, उनका ये आशय था। तो इसलिए वो भगवान की तत्व को बड़े विस्तार से और प्रमाण सहित यहां पर स्थापित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रथम जो परिच्छेद है यानी प्रथम जो अध्याय है उसमें जो तीसरा श्लोक है उसकी ये व्याख्या में चल रहा है, ये जो अध्याय है ना। वहां पे इस अध्याय में भी कविराज गोस्वामी ने उस श्लोक को उद्धृत किया है कि यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तद अश्य तनुभा या अंतर्यामी पुरुष इति सो अश्य अंश विभव षड ऐश्वर्य है पूर्ण या इह भगवान स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वम् परमिह। तो यहाँ पे जैसा कि प्रायः हमारे संस्था में तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग प्रायः जो भगवान के तत्व हैं, भले ही व्यक्ति ने शास्त्र पूरे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो वो अलग बात है, लेकिन जो सिद्धांत है वो लगभग सभी को मालूम रहता है। जो मूल सिद्धांत है कि भगवान तीन रूप से विराजमान रहते हैं, है ना, सभी लोग जानते हैं। एक होता है ब्रह्म, एक होता है परमात्मा और तीसरे होते हैं भगवान, है ना। तो उसी की व्याख्या में यहां पे बात चल रही है कि यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तद अस्य तनुभा। तो कहने का भाव है कि उपनिषदि अर्थात उपनिषदों में या वेदांत सूत्रों इत्यादि में जिसे अद्वैत ब्रह्म कहा है, अद्वैत ब्रह्म अर्थात जिसके अलावा और कुछ नहीं है, है ना, जैसे बोलते हैं नानायनः अस्तंति कञ्चनः, कि इनके अलावा कुछ नहीं है, है ना, कि भगवान ही अद्वैत ब्रह्म के रूप में, अर्थात इस जगत में जो भी वस्तु दिख रही है वो सब भगवान है, तो ये एक रूप से सही है क्योंकि उनका ही प्रकाश है। लेकिन उसको और विस्तार करते हुए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया अचिंत भेदाभेद तत्व का, उससे ये सिद्धांत और भी सही हो गया, और भी प्रकाशमान हो गया, और भी दिव्य हो गया, ठीक है ना। तो पहले इन्होंने जो भगवान का ब्रह्म तत्व है, जो प्रकाश है, जो यहां पे लिखा है तद अस्य तनु भा धातु होती है राजरी द्रीप्तो, यानी भगवान की शरीर की जो कांति है, जो चमक है, वो क्या है, ब्रह्म। फिर आगे बता रहे हैं दूसरा जो भगवान का स्वरूप है कि या अंतर्यामी पुरुष इति सो अस्य अंश विभव, कि जो अंतर्यामी पुरुष है अर्थात परमात्मा। अब परमात्मा के भी तीन भेद हैं, हाँ, जैसे हम सभी जानते हैं कि तीन प्रकार के विष्णु हैं। सबसे पहले जो कभी भी गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के संपर्क में आता है तो पहली बार उसको पता चलता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन विष्णु हैं, तो बेचारा वो आश्चर्यचकित हो, अच्छा हमने तो सुना था एक ही विष्णु होते हैं, यहां तो तीन तीन विष्णु की बात हो रही है, लगता है इनके पास कुछ विशेष ज्ञान है, है ना। तो यहां पे जो परमात्म स्वरूप है वो तीन प्रकार के हैं। आप लोगों ने फोटो देखा होगा कि भगवान कर्णोदक्ष विष्णु लेटे हुए हैं और उनके रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, है ना। तो जो सबसे पहले जो व्यष्टि, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि, व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि यानी समग्र। तो जो समष्टि ब्रह्मांड है या भगवान का जो स्वरूप है उसका जो परमात्म तत्व है वो क्या है, कर्णोदक्षय विष्णु, ठीक है ना। यानी भगवान जो अनंत विभूति में प्रकाशित है, जो पूरा ब्रह्मांड है और वो भी अनंत रूप से है, उसका अगर परमात्मा देखा जाए समष्टि तत्व का परमात्मा, तो वो कौन है, कर्णोदक्षय विष्णु। फिर एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, भगवान के रोम शरीर से, भगवान के शरीर से रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो एक ब्रह्मांड को लिया। अब उस ब्रह्मांड के अंदर, है ना, व्यष्टि रूप से, व्यष्टि मतलब एक विशेष रूप से जो भगवान उस ब्रह्मांड के अंदर विराजमान होते हैं उनका नाम है गर्भोदाक्षय विष्णु। तो ये भी परमात्म स्वरूप ही है, ऐसे समझ लीजिए। तो परमात्मा के तीन भेद हो गए, एक हो गए कर्णोदक्षय विष्णु वाले स्वरूप, एक हो गए गर्भोदक्षय वाले भगवान के स्वरूप, और तीसरे जो हर एक जीव, फिर भगवान ने विस्तार किया अपना, है ना, जिसको क्षीरोदक्षय विष्णु स्वरूप कहा जाता है। तो हम लोग प्राय ऐसे समझते हैं कि परमात्मा मतलब जो क्षीरोदक्षय स्वरूप जो हमारे अंतर हृदय में परमात्मा है केवल वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा के अंतर्यामी के तीन स्वरूप है, एक जो समष्टि ब्रह्मांड है उनके लिए कर्णोदक्षय विष्णु, जो गर्भोदक्षय विष्णु है वो किसके हैं, एक ब्रह्मांड के, यानी एक ब्रह्मांड को एक व्यष्टि माना जाए तो उसके जो अंतरात्मा है यानी उसको क्रियान्वित करने वाले हैं वो कौन है, गर्भोदक्षय विष्णु। और हर एक जीव के अंदर जो परमात्मा रूप से विराजे हैं, जो जीवात्मा को जैसे बोलते हैं ना उपदेष्टा अनुमंता चा, जो परमात्मा का मुख्य कारण है या फिर मुख्य कार्य है, वह उपदेष्टा अनुमंता चा, कि हर एक जीव को उपदेशित करते हैं कि तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो, प्रेरणा देते रहते हैं। अनुमंता चा, उसने पूर्व जन्म में जैसे प्रारब्ध किए होते हैं, कर्म किए होते हैं, उसके अनुरूप उसको कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये हो गए परमात्मा। तो परमात्मा के तीन भेद हो गए, ठीक है ना, वही यहां पे बताए जा रहे हैं। तो सड ऐश्वर्य पूर्णियो या यह भगवान सा स्वयंवयम। अब तीसरा जो भगवान का स्वरूप है जिसकी हम आराधना करते हैं, क्योंकि ये जो पहले जो तीन परमात्मा हुए, कर्णोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु या गर्भोदक्षय विष्णु, जो तीनों हैं इनकी योगी लोग उपासना करते हैं, है ना। आप अगर द्वितीय स्कंद पढ़ेंगे और द्वितीय स्कंद में आप प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय पढ़े तो वहां पे दो प्रकार की मुक्तियों का वर्णन आता है, क्रम मुक्ति और शब्द मुक्ति। तो इन दोनों मुक्तियों में जिन परमात्मा का हृदय में चिंतन करने के लिए कहा है, जिन चतुर्भुज स्वरूप का चिंतन करने के लिए कहा है, वह परमात्मा स्वरूप है। तो वो योगियों के लिए रहता है ना, योगियों के लिए, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो ब्रह्म की उपासना करता है और ब्रह्म लीन हो जाता है। योगी होते हैं वो या तो योग सिद्धि चाहते हैं, जो अष्ट सिद्धियां होती हैं उनकी इच्छा रखते हैं, या फिर भगवान के क्या कहें, योगी क्या चाहते हैं, भगवान का जो रूप है उसमें तादात्म्य चाहते हैं, या फिर उनको, या फिर कहें ज्यादा से ज्यादा जो भगवान की सारूप मुक्ति या सालोक मुक्ति, इस प्रकार की वस्तुओं को चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, जो चतुर्भुज स्वरूप है। अब जो व्यक्ति जिस प्रकार की भावना करके भगवान की सेवा करेगा उसको वैसा ही रूप प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब जो तीसरे प्रकार के भगवान के स्वरूप है वह है भगवान। तो ब्रह्मेति सब परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, उसी की ये पूरी व्याख्या एक प्रकार से। तो सड ऐश्वर्य पूर्णियो या यह भगवान सा स्वयं न चैतन्यात कृष्णात जगति पर तत्व परम, यानी उन भगवान परम कृष्ण उनसे परम तत्व और कोई नहीं है। यानी भगवान के अनेक स्वरूप हो गए, नारायण इत्यादि जो स्वरूप है और भी विष्णु के स्वरूप है, ये सब भगवान के ही स्वरूप हो गए एक प्रकार से, विशेष रूप से नारायण स्वरूप। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ना चैतन्यात कृष्णात जगति पर तत्व परमिहा, कि सड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान जिनको कहा गया है वे श्री कृष्ण चैतन्य ही, क्योंकि यहाँ पे चैतन्य तत्व अर्थात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का क्या तत्व है उसका निरूपण किया जा रहा है। सो वही बात यहाँ कही जा रही है कि ना चैतन्यात कृष्णात जगति पर तत्व परमिहा, कि उन चैतन्य महाप्रभु से कोई विशेष पर तत्व है मैं नहीं जानता। तो इस श्लोक की इस पूरे अध्याय में व्याख्या हो रही है, पहले तो ये मन मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। अब इसी सिद्धांतों को अलग अलग प्यारों में अलग अलग सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए कविराज गोस्वामी पहले ब्रह्म शब्द की उपाख्या करते हैं, व्याख्या करते हैं कि ब्रह्म क्या है, भगवान का तेज है ना, तस्य अनुभा। फिर अंतर्यामी स्वरूप की व्याख्या करते हैं, है ना, प्राह अंतर्यामी स्वरूप से हमने जैसे यहाँ पे देखा कि तीन स्वरूप समझ लेने चाहिए, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, जो इस संसार के हर एक जीव एवं ब्रह्मा की भी जो आत्मा होके विराजमान है, क्योंकि जीव भी ब्रह्मा भी जीव कोटि में ही आते हैं, तो उनकी भी आत्मा होके विराजमान है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी तत्व की आगे व्याख्या करते हुए, यानी भगवान का जो भगवत तत्व है या फिर कहें जो भगवान स्वरूप है या द्विभुज या चतुर्भुज स्वरूप है, उसकी व्याख्या में आगे यहाँ पे ये बातें कह रहे हैं। जैसे अगर पिछले दो प्यारों को देखा जाए, सेई नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद एकै विग्रह किंतु आकार अभेद, इहोत द्वि भुजा तिहो धरे चारि हाथ, एहो वेणु धरे तेहो चक्रादिक साथ। तो दोनों है एक ही तत्व, लेकिन वैभव और प्रकाश वेद से दोनों में अंतर हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण और बलराम में तत्वता कोई भेद नहीं है, लेकिन जो भगवान बलराम है वो उनके क्या कहलाते हैं, वैभव विलास स्वरूप कहलाते हैं। और भगवान कृष्ण ही जैसे रासलीला हुई तो रासलीला में बताते हैं कि 300 कोटि गोपियां थी, 300 करोड़ गोपियां, तो भगवान ने भी 300 करोड़ स्वरूप धारण कर लिए। तो यद्यपि भगवान कृष्ण एक ही जैसे हैं, सारे जितने 300 करोड़ भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं वो एक ही जैसे हैं, तो उनको कहा जाता है प्रकाश भेद। या दूसरा उदाहरण लें कि जैसे भगवान द्वारका में लीला कर रहे हैं, उन्होंने 16,108 विवाह किए और सभी महर्षियों के लिए उन्होंने अलग अलग भवनों का निर्माण कराया। तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान एक दिन यहाँ रहते थे, फिर दूसरे दिन अलग जाते थे, तीसरे दिन, ऐसा नहीं है। भगवान एक समय ही सारे भवनों में एक साथ विलास करते थे और वो भी अलग अलग क्रियाओं के साथ, है ना। वहां पे जब नारद मुनि वहां दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने प्रमाण स्वरूप में वहां प्रस्तुत किया कि देखिए कि भगवान कैसे अलग 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 समय अलग अलग प्रकार की लीला कर रहे हैं। जब नारद मुनि वहां एक भवन में जाते हैं तो भगवान उनके चरण पखारते हैं, दूसरे भवन में जाते हैं तो नारायण लक्ष्मी जी के साथ में अर्थात रुक्मणी जी के साथ में विराजमान है, तीसरे भवन में जाते हैं तो भगवान भोजन कर रहे हैं, किसी और भवन में जाते हैं तो भगवान अपने पुत्र पुत्रियों को विवाह कर रहे हैं, तो एक ही समय में अलग अलग व्यक्ति उनको देख रहे हैं। और नारद मुनि जहां पे भी जा रहे हैं भगवान उनको बोलते हैं, अरे नारद कब आए? तो नारद जी भी आश्चर्यचकित कि अभी तो मैं इनसे मिलके आ रहा हूं और ये यहां पे बोल रहे हैं कब आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि भगवान यहाँ पे जो है जितने स्वरूप विस्तार करेंगे उतने ही उनका वैभव भी विस्तार हो जाएगा, उतने उनके स्वरूप विस्तार हो जाएंगे। और हर एक स्वरूप में भगवान अलग अलग प्रकार की लीला करने में सक्षम है, इसीलिए तो अब नहीं तो अगर विग्रह स्थापना हो तो जो कहें कि ये पहला विग्रह है, यही केवल एक विग्रह है, इसके आगे कोई विग्रह नहीं हो सकते, तो फिर लड़ाई हो जाएगी, है ना। इसीलिए भगवान के जितने विग्रह स्थापित होते हैं उतने स्वरूपों में भगवान विराजमान हो जाते हैं प्रकाश भेद से। तो वही यहाँ पे स्वरूप यहाँ पे विस्तारित किया जा रहा है कि भगवान जैसे नारायण हो गए तो नारायण भगवान के वैभव विलास स्वरूप हो गए, कि भगवान का जो वैभव है उसके जो विलास स्वरूप हो गए वो है नारायण, या फिर बलराम जी, या फिर संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, जो भी भगवान के अनंत कोटि जो शक्ति स्वरूप है भगवान के, तो वह भगवान के विस्तार हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वैभव विस्तार कहलाते हैं। और भगवान के ही जैसे जो रहेंगे यानी कृष्ण स्वरूप जैसा है वैसे ही कई स्वरूप हुए तो उसको बोलते हैं प्रकाश भेद। चैतन्य चरितामृत में इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है आगे। अब यहाँ पे जो आज का श्लोक है उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं उस स्तुति में से एक श्लोक को उद्धरण किया है कि नारायण तत्व तो है क्या, नारायण क्या है। प्रह नारायण को लेके लोग भ्रमित रहते हैं, उनको लगता है कि जो बैकुंठ में निवास करते हैं वो नारायण है, कि रमा बैकुंठ में जो निवास करते हैं कि वो नारायण है। तो नारायण अपने कई भेद होते हैं नारायण के, या फिर जिनको विष्णु कहा जाए नारायण कहा जाए एक ही बात है, है ना। जब नारायण पर व्योम बैकुंठ में अवस्थित रहते हैं यानी अपने धाम में बैकुंठ में जो इस जड़ जगत से ऊपर है वहां पे अवस्थित रहते हैं तो नारायण स्वरूप में रहते हैं, और वही नारायण जब इस पृथ्वी पे विराजमान होते हैं तीन परमात्मा के रूप में, या कहें कारणो दक्षे विष्णु, गर्वो दक्षे विष्णु या क्षीरो दक्षे विष्णु, तो वो विष्णु स्वरूप में हो जाते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि जब नारायण अपनी पालन शक्ति के साथ में इस जगत में अंतर्भूत होते हैं, पालनी शक्ति या फिर जो स्थापन करने की शक्ति है, जगत को चलाने की जो शक्ति है, पालन करने की जो शक्ति है, उसके साथ में जब नारायण अंतर्भूत होते हैं या फिर यहाँ पे आविर्भूत होंगे तो फिर क्या होंगे, वही विष्णु कहलाने लगते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब इस श्लोक की व्याख्या कर देखते हैं, जो आज का श्लोक है इसमें विशेष रूप से बताया है कि जो नारायण तत्व तो है क्या। अब जैसे पहली पंक्ति में बोल रहे हैं कि नारायणयस्तम नहीं सर्वदेही नाम, इसकी चक्रवर्ती पाद में बड़ी सुंदर टीका है, सभी आचार्यों ने बड़ी अच्छी टीका की है। अब इसका जो तत्व है वो थोड़ा पहले वो समझना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कि इसके पूर्व में चल क्या रहा था, कि ब्रह्मा जी एकदम से भगवान कृष्ण को नारायण कह के क्यों संबोधन करने लगे। क्योंकि भगवान जो नारायण स्वरूप है उनसे ही ब्रह्मा निकले हैं। ब्रह्मा को ये तो मालूम है कि मैं नारायण का पुत्र हूं, लेकिन उनको ये इस चीज में संशय है कि कृष्ण जो दिख रहे हैं, कृष्ण की वो विभुता भी देख रहे हैं, कृष्ण की भगवत्ता को भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अघासुर का जो वध देखा और अघासुर की जो जीवात्मा थी वो भगवान के शरीर में जाके मिल गई। तो ब्रह्मा जी इतना तो उनको विश्वास हो गया कि ये है तो भगवान, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब ब्रह्मा जी क्या है, अब क्या है, देवता है, पर देवता है या महादेव है, ऐसा कहना चाहिए, सर्वोच्च देवता है। उनकी प्रवृत्ति यह है कि वो देखते रहते हैं कि किसका क्या स्तर है और उसके स्तर पे उसको वो वस्तु प्रदान की जाए, है ना। तो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान कृष्ण के स्तर को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेरे पिता नारायण हैं उनसे इनकी स्थिति क्या है, ऊपर के हैं कि नीचे के हैं कि बराबर के हैं, क्या है। इसीलिए यहां पे ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं उसमें सबसे पहले नारायण करके इनकी स्तुति करी जा रही है बार बार, है ना। तो ब्रह्मा जी ये जानना, तो ब्रह्मा जी के मन में वास्तव में एक दो संशय है। संशय ये है कि इन कृष्ण की जो भगवत्ता है तो भगवान, ये तो उनके मन में बिल्कुल 100% फिट हो गया कि ऐसा नहीं है कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि अभी अभी इनकी ब्रह्म ज्योति जो अघासुर था उसकी ज्योति भगवान में गई, इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान है। लेकिन इनकी जो भगवत्ता है वो सार्वकालिक है या तात्कालिक है, ये जानना चाह रहे हैं। आचार्यों ने जो निरूपण किया है वो इसी तरीके से कारिका में किया है कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की जो भगवत्ता है उसकी सत्ता को जानना चाह रहे हैं कि भगवान की जो भगवत्ता है वो सार्वकालिक है या तात्कालिक है। तात्कालिक का मतलब होता है कि कुछ क्षण के लिए है, जैसे होता है ना कि भगवान किसी जीव के अंदर शक्ति आवेशित कर देते हैं, जैसे व्यासदेव जी हुए, नारद जी हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए, पृथु महाराज हुए, तो ये शक्तावेश अवतार कहलाते हैं कि एक कोई विशेष शक्ति इनके अंदर आवेशित कर दी जाती है और ये क्या होते हैं उस शक्ति के अनुरूप फिर कार्य करने लगते हैं, तो भगवान का एक अंश उनमें आ जाता है। तो इस प्रकार के जो स्वरूप होते हैं ये तात्कालिक कहलाते हैं कि तात्कालिक भगवान की भगवत्ता इनमें आ गई है, तो वो शक्तावेश अवतार होते हैं। तो ब्रह्मा जी यही जानना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की जो सत्ता है वो कैसी तात्कालिक भगवत्ता है या सार्वकालिक है, यानी हमेशा ही भगवान रहेंगे, जैसे भगवान छोटे हो गए, क्योंकि उनको भ्रम इसलिए हुआ दूसरा कि हमारे जो नारायण है वो तो जब बड़े परम शुद्ध अग्नि में परम शुद्ध वेद मंत्रों के साथ में जिसमें इतना सा भी भेद नहीं है तब होता है, तब जाके वो ग्रहण करते हैं यज्ञों को। लेकिन यहां पे तो ये जूठन खा रहे हैं और जूठन खिला रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण है वो ग्वाल वालों के साथ में बैठे हुए थे, ग्वाल वालों के साथ में बैठे हुए थे, बैठे बैठे वो अब मधुमंगल कहता है कि देखो कृष्ण ये जो कचौड़ी है कितनी सुंदर है, खा के देखो, पहले खुद खाता है फिर कृष्ण को खिलाता है। कोई दूसरा सखा सुबल इत्यादि रहते हैं, बोलते हैं देखो ये जो लड़ुआ है ये कितना सुंदर है, जैसे होते हैं ना सतुआ के लड़ुआ, सतुआ के लड़ुआ में अगर घी थोड़ा कम पड़ जाए तो फुर्र हो जाते हैं। एक बार की लीला स्मरण आती है कि जब भगवान कृष्ण ऐसे ही बाल सखाओं के साथ में खा रहे थे लड़ुआओं को, तो जो सुवल ने अपना लड़ुआ भगवान कृष्ण को दिया, भगवान कृष्ण ने जैसे ही हाथ में लिया उसमें घी न कम पड़ो, तो घी कम पड़ने से क्या हुआ कि फुर्र करके घूम गया। तो सखा बोलने लगे अरे जा रे जा, तेरी मैया बहुत कंजूस है, माने नेक भी घी ना डालो जा मैं। अब घी अगर किसी लड्डू में कम पड़े तो वो वैसे ही बिखर जाए। अब कृष्ण उस सखा के कान में जाके बोलते हैं कि देख तेरी कैसी फजीती हो गई है, अगर तू मुंह को एक लड़ुआ देगो तो मैं तेरी अभी बढ़वाई कराए देता हूं। तो बोले अच्छा, बोले कराए दे कृष्ण कराए दे। तो कृष्ण बोलते हैं देखो भाई ऐसी बात ना है। तो बोले कैसी है, बोले ऐसी है कि लड्डुआ इतना मीठो है कि या लड़ुआ के मारे तो पवन देव को भी जी मर चला गए हो, तो पवन देव आके लड़ुआ ले गए। तो ऐसे हंसी खुशी हो रही हो वहां पे। सभी सखा बोले हाँ भाई पवन, हवा तो बड़ी जोर की चली थी। तो इस प्रकार से हंसी करते जाएं और खाते जा रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। तो अलग अगर आप आचार्यपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने ही एक ग्रंथ लिखा है गोविंद लीलामृत, बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है। उस ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व व्यक्ति को अपना साधन का स्तर बढ़ा लेना चाहिए, मतलब कम से कम 64 माला जो जप करे वही व्यक्ति भगवान की अष्टकालीन लीला को पढ़ने का अधिकारी होता है। मतलब जो अच्छे साधक हुए हैं उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि इससे फिर व्यक्ति जो भौतिक धरातल है उससे ऊपर उठ जाता है। नहीं तो व्यक्ति भौतिक धरातल पर सोचेगा रहेगा तो राधा कृष्ण की अगर गुह लीला को पढ़ेगा तो उसके अंदर में विकार उत्पन्न हो सकता है ना। तो इसलिए पहले अपना स्तर ऊपर करें, यानी भजन का स्तर इतना होना चाहिए कि कम से कम 8-10 घंटे बैठ के जप कर रहे हो, तो फिर जाके आप 1-2 घंटे ऐसी लीलाओं को पढ़ेंगे तो आपको रसस्वादन हो सकता है, नहीं तो अधापतन की भी स्थिति आ सकती है। तो वहां पे गोविंद लीला अमृत आदि ग्रंथों में इस प्रकार की बहुत सारी लीला है कि भगवान के कैसे सुबह से लेकर शाम तक की जो लीलाएं हैं, यानी अष्ट प्रहर जो लीलाएं होती हैं, उनका विशेष चिंतन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। अन्य आचार्यों ने भी किया है, जैसे कि चक्रवर्ती पाद का ग्रंथ है कृष्ण महामृत महाकाव्य, वहां पर भी भगवान की जो अष्टकालीन लीलाएं हैं उनका वर्णन है। लेकिन सावधान, ऐसी लीलाएं पढ़ने से पूर्व, क्योंकि ग्रंथ तो सभी जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगे, इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो स्तर है भजन का वो होना चाहिए। हर एक वस्तु आस्वादनीय है ना, रबड़ी भी आस्वादनीय है, वो छाछ भी आस्वादनीय है, लेकिन रबड़ी को पचाने के लिए उतनी मेहनत होनी चाहिए आपकी, है ना। तो ये जो दिव्य लीलाएं हैं भगवान की, उनका आस्वादन करने के लिए उस कोटि का हमारा क्या होना चाहिए, साधन भक्ति होना चाहिए, तभी हम उसको उस कोटि में आस्वादन कर पाएंगे, नहीं तो हम उसको भौतिक धरातल पे ही देखेंगे। तो यहाँ पे यही लीला चल रही है कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण इस प्रकार से जूठन खा रहे हैं और जूठन खिलाए रहे हैं, तो उनका मन भ्रमित हो गया कि मैं जो जहां तक मैं नारायण को जानता हूं वो तो एकदम विशुद्ध वस्तुओं को खाते हैं, वो भी यज्ञ में जो हवनीय वस्तु होते हैं केवल उसका ही सेवन करते हैं, वो भी कभी कभी आवाहन करने पर नहीं करते हैं, और यहां तो जबरदस्ती कुछ लीलाओं का तो ऐसा चिंतन किया है आचार्यों ने कि भगवान ने किसी सखा के मुंह में से अंदर जूठन निकाल के खा लिया ऐसा भी कुछ आचार्यों ने वर्णन किया, कुछ श्लोक प्राप्त होते हैं कृष्ण कर्णामृत इत्यादि में। तो जब इस प्रकार की लीलाओं को ब्रह्मा जी ने देखा तो उनकी, यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, उनकी भी बुद्धि चकरा गई कि ये भगवान है कि नहीं। एक तरफ भगवान की भगवत्ता भी देखी कि अघासुर की ब्रह्म ज्योति इनमें लीन हो गई, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि इनकी भगवत्ता है। दूसरा तरफ संशय ये उत्पन्न हो गया कि ये जूठन क्यों खा रहे हैं, अगर भगवान है तो भाई आराम से खाएं, ये सखाओं के साथ में जूठन खा रहे हैं, उनकी मति एकदम भ्रमित हो गई। उसी भ्रम के कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो मैं एक काम करता हूं, इनका अभी परीक्षण कर लेता हूं, अभी मैं इनके बछड़ों को इनके बालकों को चुरा लेता हूं, और चुराने के बाद अगर ये भगवान होंगे तो अपनी भगवत्ता से स्वयं ही जान जाएंगे कि किसने चुराए हैं, और अगर भगवान नहीं होंगे तो अपने आप ढूंढते हुए कहीं जाएंगे, मुझसे याचना करेंगे कि मेरे बछड़ों को दे दो, सो मैं तो लौटा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि ये किस प्रकार के भगवान है। तो वही यहां पे भगवत्ता भगवान की दिखाई गई, भगवान जान गए कि ब्रह्मा ने मेरे बछड़ों को चुराया है। भगवान ने अपने भगवत्ता से अपने ही असंख्य विस्तार करके, जैसे लकुट जैसे बछड़ा थे जैसे बाल गोपाल थे, वैसे ही भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वरूपों को, यानी कि जो भगवान का जो विष्णु स्वरूप है उसी से, या नारायण स्वरूप है उसी से अनंत कोटि अपना विस्तार किया, है ना। तो भगवान का जो वैभव विलास भेद है उससे विस्तार किया। तो वहां पे भगवान, इसीलिए अब यहाँ पे जो नारायण स्वरूप से इन कृष्ण की स्तुति करते हुए यहाँ पे ब्रह्मा जी दिखाए जा रहे हैं, कह रहे हैं हे नारायण, नारायणस्त्वम नहि सर्वदेही नाम, के हे प्रभु क्या आप सभी जीवों के नारायण नहीं हो। इसकी टीका में चक्रवर्ती पाद का कहने का आशय इस प्रकार से है, मानो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, और जो कृष्ण है वो इधर उधर देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके बछड़ा खो गए हैं, वो गाय खो गई हैं, जो बछड़ा छोटे छोटे बछड़े चराते हैं, और उनके सखा भी खो गए हैं। जब ब्रह्मा जी उनके सामने इधर आ जाएं तो कृष्ण इधर देखने लगे, जब ब्रह्मा जी उनके सामने इधर आ जाएं तो कृष्ण उधर देखने लगे, कृष्ण ब्रह्मा की तरफ नहीं देख रहे हैं। कृष्ण को लग रहा है कि हमारे तो बछड़े हमारे तो सखा खो गए हैं, ये पता नहीं चार मुंह का जानवर कहां से आ गया, हमारे बीच में लठिया लगा करके टेका लगा के हमें हमारी गैयाओं को बछड़ाओं को नहीं ढूंढने दे रहे। तो इस प्रकार से भगवान का भाव है यहाँ पे आचार्यों ने जो निरूपित किया है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे नारायण, अब ब्रह्मा जी ने तो नारायण तत्व को अच्छे से जाना है, कृष्ण तत्व को नहीं जाना है, इसलिए बोल रहे हैं हे कृष्ण क्या आप वही नारायण नहीं हो। नारायण शब्द का अर्थ यहाँ पे तीन प्रकार से दिखाया गया है, नार और अयन। नार शब्द का होता है अर्थ नार अर्थात जीव, नरः आभूतः इति नरः, मतलब नरों से नरात आभूतः, यानी नर अर्थात भगवान पुरुष परम पुरुष, उनसे जो उद्भूत हुआ है अर्थात जीव। और अयनम, अयनम मतलब आश्रयम, मतलब जो जीव नारायण के शरीर से, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जो जीव हैं, जो नारायण के शरीर से निकले हुए हैं, उन जीवों के जो अयन है, अयन अर्थात आश्रय, पहला अर्थ हुआ नारायण मतलब सभी जीवों के जो आश्रय हैं, तो वो हुआ नारायण। दूसरी पंक्ति में जो भाव दिया है वो है आत्मास्य अधीश अखिल लोक साक्षी, कि आप तो हे नारायण आप तो देखो ना पूरे जगत की आप साक्षी हो। अर्थात दूसरे नारायण शब्द का अर्थ हुआ नार अर्थात जो जीवों के, अयनम मतलब दृष्टा, दृष्टा मतलब कि जो सभी जीवों को देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, किसको क्या दिया जाए। तो सभी जीवों के जो अयनम, अयनम मतलब जो दृष्टा होके विराजमान है, एक तो हुए आश्रय और दूसरे हैं दृष्टा। तो हे प्रभु क्या आप सभी जीवों के साक्षी नहीं है, अर्थात क्या आप पर्यात्मा या फिर आप अंतर्यामी नहीं है क्या? अवश्य है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और तीसरा स्वरूप है, बोल रहे हैं कि नारायणो अंगम नर अभूत जलायनाथ। नारायण अर्थात नर, नर अर्थात भगवान, भगवान विष्णु, उनसे जो उद्भूत हुआ वो हुआ नार, यानी नार अपत्य पुमान नारा, ऐसे समझ सकते हैं। नर यानी महापुरुष या महापुरुष महाविष्णु, उनके शरीर से जो अद्भुत हुआ अर्थात जल, जैसे गर्भोदक्षय विष्णु, जब गर्भोदक्षय प्रकट होते हैं तो पहले विष्णु प्रकट होते हैं, फिर विष्णु के शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है, उसी को नार कहा गया है। तो नर यानी गर्भोदक्षय विष्णु, उनके शरीर से जो उत्पन्न हुआ वो हुआ नार, और उसमें अयनम है ना, उसमें जो शयन करे अर्थात जो गर्भोदक्षय विष्णु हुए तो वो है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं भगवान के इन स्वरूपों को तीन प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, नारायणम अर्थात नार यानी जीव, जो नारायण से निकले हैं वो जीव नार, अयनम तो सभी जीवों के जो आश्रय हैं, यानी एक हुए आश्रय, दूसरा स्वरूप हुआ जो सभी जीवों के दृष्टा है, अयन शब्द के कई सारे अर्थ हैं, उसमें एक अर्थ दृष्टा भी है। और तीसरा जो अर्थ है कि भगवान नर, नर के स्वरूप से जो उत्पन्न हुआ वो हुआ जल अर्थात नार, और उसमें अयनम, अयनम मतलब शयनम, जो उसमें शयन करने वाले हैं वो हुए नारायण, अर्थात जो गर्भोदक्षय सावर का जो स्वरूप, गर्भोदक्षय भगवान का जो स्वरूप है वो यहाँ पे वर्णन किया गया। तो हे प्रभु क्या आप वही नहीं हो? मानो कृष्ण कह रहे हैं हाथ जोड़ के, अरे मैं कहां से नारायण हो गया, मैं तो कृष्ण हूं, दिख नहीं रहे हो, मेरा जन्म अभी गोकुल में हुआ है, मैं कहां से परव्योम नायक हो गया, यानी जो अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक जो नारायण है वो मैं कैसे हो गया? बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे चक्रवर्तीपाद ने वो वाला श्लोक मानो उद्धरण किया, मतलब डायलॉग चल रहा है ब्रह्मा जी के बीच में और भगवान के बीच में इस प्रकार से। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप नारायण नहीं हो, तो बोले नहीं नहीं मैं नारायण नहीं हूं, मैं तो गोपाल हूं, देखो ना मेरा जन्म अभी हुआ है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने भगवत गीता में कहा है कि एक मैं एक अंश से पूरे जगत को मैं विस्तारित करता हूं, है ना, अंतिम श्लोक आता है दसम अध्याय का कि एकांश नहा अवस्थिता त्रिजगत, कि मतलब कि मैं एक अंश से ही इस जगत की जितनी विभूतियां होती हैं उसको प्रकाशित करता हूं। अर्थात भगवान एक नारायण स्वरूप से या एक कारणोदक्षय विष्णु स्वरूप से ही समस्त जगत को प्रकाशित कर देते हैं, ये बताते हैं। तो ये कृष्ण आपने भगवत गीता में बोला है ना कि मेरे अंश से हुआ है, तो भगवत गीता तो ऐसा थोड़ी कि इस काल में अभी प्रकट होगी और भगवान, तो वो तो पहले से ही विद्यमान है। तो मानो इस प्रकार से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा और कृष्ण के बीच में क्या हो रहा है, आपस में डायलॉग हो रहा है, संवाद हो रहा है। तो जो आचार्यों की टीका होती है वो संवाद पूर्वक भी रहती है, मतलब एक एक श्लोक में एक एक शब्द कहने का क्या भाव है, उसके प्रति उत्तर में कौन क्या कह रहा है वो बताया जाता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो आज का श्लोक है इसमें नारायण के जो तीन स्वरूप है या फिर कहें नारायण शब्द के जो तीन अर्थ है उनको निरूपण किया गया, और विशेष रूप से जो भगवान का अंतर्यामी स्वरूप है वह भी तीन प्रकार का हुआ। एक तो जो व्यष्टि ब्रह्मांड है, व्यष्टि ब्रह्मांड यानी एक ब्रह्मांड, उसके अंतरित परमात्मा जो स्वरूप है वो हुए कौन से, गर्भोदक्षय विष्णु। एक जो समष्टि ब्रह्मांड है मतलब अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है और उनको उनके जो परमात्मा है या फिर उनके अंतर्यामी स्वरूप है वो हो गए क्षीरोदक्षय विष्णु, और हम जैसे जो क्षुद्र जीव है अनंत कोटि जो जीव है उनके हृदय में जो परमात्मा के रूप में या अंतर्यामी के रूप में रहते हैं वो हो गए क्षीरोदक्षय विष्णु, ये हुआ। और नारायण शब्द के जो तीनों अर्थ हैं वो यहाँ पे प्रकट हुए। तो बोल रहे हैं कि तच्चापि सत्यम न तवेव माया, हे प्रभु ये जो जगत दिख रहा है और ये आपके नारायण स्वरूप दिख रहे हैं, ये कोई माया नहीं है, ये सत्य है। आप जितने रूपों में भाषित हो रहे हैं, तीन रूपों में, यानी महाविष्णु, कारणोदक्ष विष्णु, वही कारणोदक्ष विष्णु और गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में, ये आपका वास्तविक स्वरूप है। तो इसी के साथ में कहने के लिए तो नारायण शब्द के लिए बहुत सारी व्याख्या है। जीव गोस्वामी पाद ने करीब 2-3 पेज की इसमें व्याख्या लिखी है। अगर उसको व्याख्या की जाएगी तो इसके लिए अतिरिक्त 1-2 घंटे चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इस पर कोई अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो कृपया अवश्य कहिए। देखिए, नारायण का स्वरूप कृष्ण नहीं है। कृष्ण के जो विलास अवतार है वो नारायण है। और आपका प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए कि कृष्ण के जो स्वरूप नारायण है वो किस प्रकार से, 3 प्रकार के हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली, या तो माइक दे दी। ऑन कर लीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा आपने समझाया प्रभु जी। जो नारायण के 3 रूप आपने बताया ना, हम 3 रूपों से भगवान को, अयन का बताया, जो दृष्टा रूप में बताया, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं?
अच्छा, आपको ये, मैं दृष्टा को कृष्ण समझ रहा।
नहीं नहीं, दृष्टा।
नारायण का जो दृष्टा स्वरूप है वो कैसे, तो अभी जैसे बताया, जो परमात्मा स्वरूप है, मतलब हर एक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप से रहते हैं, और परमात्मा स्वरूप से रहते हुए जीव की जो भी गतिविधियां होती हैं या उसके जो भी कर्म फल उसको भोगने होते हैं, तो उसके साक्षी होते, जैसे जीव कोई अच्छा कार्य कर रहा है या कोई बुरा कार्य कर रहा है, तो उसका साक्षी कौन है? तो एक साक्षी परमात्मा भी है। वैसे कई सारे साक्षी होते हैं। अगर आप 6ठा स्कंद पढ़ेंगे और उसमें 2ध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें विष्णु दूतों और यम दूतों के बीच में संवाद आता है। तो विष्णु दूत वहां पे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुमको कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है, अपराध किया है? तो वहां पे जो धर्मराज के दूत हैं, यानी यम दूत है, वो बताते हैं कि हमारे 1 नहीं 2 नहीं, हमारे 14 हमारे साक्षी हैं, उसमें से एक परमात्मा भी एक साक्षी है ना। उसमें जल को, अग्नि को, आकाश को, संध्याओं को, अनेक रूपों को वहां पे साक्षी बताया है, उसमें से एक साक्षी परमात्मा भी है।
हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू।
ग्रंथराज श्रीमंत चैतन्य चरितामृत की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।